نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کل ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بات کی تھی. امید ہے کہ ان کی زندگی سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ان کے 3 سال جو تھے جن میں ان میں حکومت کی انہوں نے، وہ انتہائی شاندار تھے اور انہوں نے زمین کو عدل سے بھر دیا تھا. آج ان کی زندگی کے کچھ اور واقعات دیکھتے ہیں. پہلا واقعہ ان کا اس وقت کا ہے جب وہ مدینہ کے حاکم تھے. ایک ایسا بھی وقت آیا تھا، ولید جو ان کا چچا زاد تھا جس وقت وہ خلیفہ تھا، تو اس نے ان کو مدینہ کا گورنر بنا دیا تھا. تو اس وقت ان کے جو حالات تھے وہ کچھ زیادہ بدلے نہیں تھے ابھی. تو اس وقت کا واقعہ ہے کہ ایک بڑا شاعر تھا اور اس وقت شاعروں کی بڑی مانگ ہوا کرتی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر تھے تو میں نے ان کی تعریف میں شیر گائے اور انہوں نے مجھے 15 عمدہ نسل کی اونٹنیاں انعام کے طور پہ دی، اور میرا حوصلہ نہیں پڑتا تھا کہ میں اکیلے اپنی منزل پہ روانہ ہوں، کیونکہ میری رہائش نجد میں تھی جو کہ مدینہ سے کافی فاصلے پر تھا. راستے میں خطرہ تھا کہ کوئی مجھ سے یہ چھین نہ لے، اور یہ ایسی عمدہ اونٹنیاں تھیں جن کو بیچنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا. میں انہی خیالات میں تھا کہ چند ساتھی میرے پاس آئے جو میرے علاقے نجد جانے کا ارادہ کرتے تھے. میں نے ان سے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں. انہوں نے حامی بھر لی کہ آج رات ہم روانہ ہوں گے، آپ بھی تیار ہو جائیں. میں عمر بن عبدالعزیز کو الوداعی سلام کہنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا وہاں ان کے پاس 2 آدمی بیٹھے ہیں جن کو میں نہیں جانتا تھا. جب میں نے سلام عرض کر کے واپس جانے کی اجازت چاہی تو عمر میری طرف دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں، اے دکین، میرے دل میں ترقی کرنے کا بہت شوق ہے. اگر کبھی تجھے معلوم ہو کہ میں کسی بڑے عہدے پہ فائز ہو گیا ہوں تو ملاقات کے لیے ضرور آنا، میں تجھے مزید انعامات سے نوازوں گا اور تیرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں گا. میں نے کہا اس بات پہ کسی کو گواہ بنا دیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ گواہ ہے. میں نے کہا اس کی مخلوق میں بھی کوئی گواہ بنائیے. آپ نے فرمایا یہ 2 لوگ گواہ ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو ایک ان میں سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب تھے، اور میں نے کہا یہ تو بہت اچھے گواہ ہیں. پھر دوسرے کی طرف دیکھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ گورنر کا غلام ابو یحییٰ ہے. میں نے کہا یہ گواہ اہل خانہ میں سے ہیں. تو میں مطمئن ہو گیا، میں نے سلام عرض کیا اور اپنی اونٹیاں لے کر چلا گیا، اور اونٹیوں میں بڑی برکت ہوئی جس کے نتیجے میں میں بہت مالدار ہو گیا. یوں ہی دن گزرتے گئے. ایک روز نجد کے علاقے یمامہ کے صحرا میں تھا کہ کسی نے آ کے بتایا کہ سلیمان بن عبد الملک کے فوت ہو جانے کے بعد اب عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دیا گیا. کہتے ہیں کہ میں نے سوچا، مجھے وہ وعدہ یاد آ گیا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جب میں کسی عہدے پہ پہنچ جاؤں، بڑے عہدے پہ، تو تم آنا. تو یہی سوچ کے میں شام کی طرف روانہ ہو گیا. جب میں دمشق پہنچا تو سامنے سے مشہور شاعر آ رہا تھا. میں نے اسے سلام کیا، کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا رہا ہوں. تو وہ کہنے لگا وہ فقراء اور مساکین کو عطیات سے نواز رہے ہیں اور شعراء کو خالی ہاتھ واپس کر رہے ہیں. میری مانو، یہیں سے واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے کہا میرا معاملہ دوسرا ہے، میرے خلیفہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. اس نے کہا جیسے تمہاری مرضی. میں وہاں سے چلا اور خلیفہ کے گھر پہنچا. وہ گھر کے صحن میں تھے، چاروں طرف فقراء، بیوگان، مظلوم لوگوں کا جمگٹھا لگا ہوا تھا. اس بھیڑ کی وجہ سے مجھے ان تک پہنچنے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی تھی. तो मैंने बुलंद आवाज से कहा, ए खैरात और अखलाक की बेनतहा सखावत करने वाले उमर बिन अब्दुल अजीज, मैं दूर दराज इलाके से आया हूँ और अपने सखी और खुश अखलाक भाई से अपना हक लेने के लिए आया हूँ। आपके ऊपर मेरा कुछ कर्जा है, वो अदा कीजिए। मेरी ये बात सुन के उनके गुलाम अबू याहिया ने बड़े गौर से मेरी तरफ देखा और फिर खलीफा की तरफ देखते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन, वाकई आपने इसे वादा किया था और मैं इसका गवाह हूं। आपने फरमाया, हाँ मैं जानता हूँ। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे और फरमाया कि मेरे करीब आओ। जब मैं उनके पास गया तो फरमाते हैं, क्या तुम ये जानते हो कि मैंने मदीना में कहा था कि मेरे दिल का हाल ये है कि जब भी कोई नेमत मुयस्सर आती है तो मेरा दिल उससे भी बेहतर की तलाश में होता है, यानी तरक्की, नेमतों में और आगे जाना। तो मैंने कहा, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझे अच्छी तरह याद है आपने ये फरमाया था। फरमाया, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा ओहदा हुकूमत की सरबराही मिल गई है। आप मेरा दिल आखरत में भी सबसे आला मर्तबे पे फायज होना चाहता है। सुभान अल्लाह, जैसे हम सब भी दुनिया का कितना शौक रखते हैं ना कि इसमें आगे से आगे हम तरक्कियां करें, जिस ओहदे पे उससे आगे जाए। फरमाते हैं, अब मेरा दिल चाहता है आखरत में भी मुझे सबसे आला मर्तबा मिले और वो जन्नत है, और मेरा दिल अल्लाह ताला की रजा हासिल कर ले। मैं इस कामयाबी की मंजिल पे पहुंचना चाहता हूँ, अगरचे बादशाह हुकूमत के जरिए दुनिया की इज्जत और दुनिया के जाह के तलाश में होते हैं, लेकिन मैं हुकूमत के जरिए आखरत की इज्जत हासिल करना चाहता हूँ। ऐ दकीन, अल्लाह की कसम, जब से मैं खिलाफत के उहदे पर फायज हुआ मैंने लोगों से एक पैसा भी नहीं लिया। मेरे पास जाती माल सिर्फ 1,000 दिरहम है। आधा आप ले लें, आधा मेरे लिए रहने दें। मैंने 500 दिरहम लिए और वापस अपने घर आया। अल्लाह की कसम, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ और इसमें बड़ी बरकत हुई। दूसरा वाक्या, वो काजी यहया बिन यहया फरमाते हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज एक रोज हिम्स के बाजार में गश्त कर रहे थे ताकि चीजों के रेट पता कर सके कि लोग कितने का दे रहे हैं। एक आदमी आपके सामने आया जिसने सुर्ख रंग की चादरें ओढ़ रखी थी। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैंने सुना है आपने ये ऐलान किया है कि जिस पर कोई जुल्म हुआ वो आपके पास फरियाद लेकर आया। आपने फरमाया, हाँ। उसने कहा, ये एक मजलूम इंसान है, बड़ी दूर से फरियाद लेकर आया है। हज़रत उमर ने कहा, कहाँ से आया? उसने कहा, आदन से। आपने फरमाया, वाकई वो तो बहुत दूर है। ये कहते ही अपनी सवारी से नीचे उतरे और उसके सामने खड़े होकर उससे पूछा, आपके पर क्या जुल्म हुआ? उसने कहा, मेरी जमीन फलाह ने ले ली है, जबरदस्ती छीन लिया और मैं कमजोर आदमी हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने आदन के गवर्नर को खत लिखा कि जब ये मेरा खत तुम्हारे पास पहुंचे तो फौरी तौर पे इस खत को लाने वाले के दलायल सुनना, अगर ये सच्चा है तो इसका हक इसको दिलाना और इसमें एक लम्हे की भी कोताही ना करना। फिर इस खत पे मोहर लगा दी और उसको पकड़ा दिया। जब वो जाने लगा वापस तो फरमाया, ठहरो, तुम इतनी दूर से आए हो, इस सफर पर कितना खर्चा उठाया, नए कपड़े भी पुराने हो गए होंगे, हो सकता है ज्यादा राह खत्म होने की वजह से तुम्हारी सवारी हलाक हो जाए। फिर सारा हिसाब लगवाया और जितने पैसे बने थे उतने उसको अदा किए और फरमाया, वहां जाके लोगों को बता देना जिस पर कोई भी जुल्म हुआ हो वो फौरन फरियाद लेकर मेरे पास पहुंचे और कोई कोताही ना करे, ताकि हर मजलूम की दादरसी की जाए। जो तीसरा वाक्य है, वो ज़ियाद बिन मैसरा, ये एक गुलाम है, उन्होंने वो बयान करते हैं कि मुझे मेरे आका अब्दुल्ला बिन अय्याश ने अपने किसी जरूरी काम के लिए मदीना से दमिश्क भेजा ताकि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज की खिदमत में हाजिर होके वो काम करा सकूं, क्योंकि मेरे अमीरुल मोमिनीन के साथ उस वक़्त से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे जब वो मदीना के गवर्नर थे। तो जब मैं वहां गया तो क्या देखा कि एक कातिब उनके पास बैठा हुआ है और कुछ तहरीर कर रहा है। जब मैं कमरे की दहलीज पे पहुंचा तो सलाम किया, जवाब दिया उन्होंने, फिर मैं आगे बढ़ा, लेकिन मुझे ये शर्मिंदगी हुई कि मैंने सलाम किया लेकिन अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा, तो जब मैं उनके करीब गया तो मैंने दोबारा कहा अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, आपने फरमाया ज़ियाद मैंने पहले भी सलाम का जवाब दिया था, अब दोबारा सलाम करने की क्या ज़रूरत है? कि कोई इसको अपनी इज्जत का मसला नहीं बनाया कि तूने ये नहीं कहा, क्योंकि उस वक्त के खुलाफा जो थे वो बड़े नाजुक मिजाज होते थे, अगर जरा सी भी बात उनके उससे कम कोई कर देता था तो गुस्से में आ जाते थे। उस वक्त कातिब जो था लोगों पे ढाए गए मजालिम की दास्तानें पढ़ के सुना रहा था जो डाक के जरिए मौसूल हुई थी। मुझे फरमाया ज़ियाद बैठो मैं इस काम से फारिग हो जाऊं फिर तुमसे बात करता हूँ। मैं दरवाजे की दहलीज पे ही बैठ गया, कातिब पढ़ के सुना रहा था और हजरत उमर गम से ठंडी आंखें भर रहे थे। जब कातिब तमाम खत सुना चुका तो अपनी जगह से उठे, मेरे पास आए और दरवाजे की दहलीज पे ही मेरे सामने बैठ गए, मेरे घुटनों पे अपने हाथ रखे, अभी ये गुलाम है सोचे, और फरमाए सयाद तुम्हारे आने की बड़ी खुशी हुई, तुमने आज बड़ा अच्छा गर्म लिबास पहना हुआ, इस सर्दी के मौसम में खूब मजा आता होगा। फिर अब सुलहाए मदीना का हाल पूछने लगे, एक एक का नाम लेके हाल पूछा कि वो वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं, जो वहाँ के नेक लोग हैं उनके मुतालिक बात की, जो अपनी गवर्नरी के ज़माने में जो भी काम किए थे उनके बारे में पूछा। फिर एक लंबी सांस ली और फरमाया ज़ियाद क्या तुझे पता है इस वक्त उमर कितनी बड़ी मुसीबत का शिकार है? मैंने कहा अल्लाह खैर करे क्या हुआ? फरमाया बहुत अफसोस है। फिर आप रोने लगे और मैं तसल्ली देने लगा, मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन अपना कुछ ख्याल करें क्या बात हुई है? आपने फरमाया ज़ियाद जो तुम उम्मीद बांधे हुए हो वो बहुत दूर की बात है। फरमाया अल्लाह ने मुझे वो मकाम दिया है कि मैं दूसरों को चाहे बुरा कहूँ भला कहूँ कोई मेरे सामने कुछ नहीं बोल सकता, मैं जिसको चाहूँ मारूँ जिसको चाहूँ पीटूँ कोई मुझे मार नहीं सकता, मैं लोगों को अजियत पहुंचा सकता हूँ कोई मुझे नहीं तकलीफ दे सकता। ये कहा और जारों कतार रोने लगे, मैंने उनको दिलासा दिया यानी कि मेरे पास इतनी बड़ी पावर आ गई है, उस चीज से परेशान थे। तो जब कहते मैं वापस जाने लगा तो आपने मेरे आका के नाम खत लिखा जिसमें मुतालबा किया कि वो मुझे इनके पास हजरत उमर के पास बेच दे। फिर अपने तकिए के नीचे से 20 दिनार निकाले और मुझे दिए, फरमाया ये जरूरत के वक्त खर्च कर लेना, ये बैतुल माल में से नहीं मैं दे रहा, ये मेरे अपने हैं, अगर बैतुल माल में तेरा कोई हक होता तो मैं वहां से दे देता। मैंने दीनार लेने से इनकार कर दिया, फरमाया नहीं ये ले लो। फिर जब उन्होंने बहुत इसरार किया तो मैंने ले लिया। जब मैं वापस मदीना पहुंचा, अमीरुल मोमिनीन का खत अपने आका को दिया तो उसने खोला और पढ़ा और मुझे बताया कि अमीरुल मोमिनीन चाहते हैं कि मैं तुम्हें उनके पास बेच दूं ताकि वो तुम्हें आज़ाद कर दें। मैं भला ये क्यों करूं, मैं ही तुम्हें आज़ाद कर देता हूं, फिर इनके आका ने ही इनको आज़ाद कर दिया। कौन इतने एक गुलाम के बारे में बात करता है या सोचता है? फिर इनके जब आखिरी अय्याम थे तो लोगों को पता चला कि बीमार हैं तो लोग दौड़े आए इनकी इयादत करने के लिए, तो आपने फरमाया मौत मुझ पे छा गई है और मैंने उसके लिए कुछ भी तैयारी नहीं की। ए अल्लाह तुझे खूब पता है कि अगर मेरे सामने दो काम होते थे, एक तेरी रजा का होता था और दूसरे मेरी ख्वाहिश का होता था, तो मैं अपनी ख्वाहिश पर तेरी रजा को तरजीह देता था, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। और मैंने आपको बताया था कि इनके साले जब मुसलमा बिन अब्दुल मलिक आए तो ये शदीद तकलीफ में थे, बेहोश हो जाते थे, और उन्होंने देखा कि खजूरों के पत्तों के गद्दे पे लेटे हैं और सर के नीचे चमड़े का तकिया और इनके ऊपर एक चादर है। जब आपको होश आता था तो मसलमा कहते थे आप वसीयत कर दें, कुछ वसीयत कर दें, तो फरमाया तुम मुझे गुसल देना, मेरे जनाजे के साथ जाना, कब्र में तुम मुझे उतारना। तो मुसलमा ने कहा कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ वसीयत करें, तो खामोश हो गए। उन्होंने कहा क्या बात है आप वसीयत क्यों नहीं करते? कहते किस चीज़ की वसीयत करूँ, अल्लाह की कसम मेरे पास तो कोई माल ही नहीं। तब मुसलमान ने कहा था, ये ले 1 लाख दीनार है, आप ये दीनार जिस तरह चाहे खर्च करें, आप ये मेरी तरफ से आपके हैं। फरमाया नहीं, जिन पे तुमने जुल्म किया ना, जाओ जाके उनको दे दो। फिर जब बेहोश हो जाते, फिर उठते, फिर उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने बच्चों को बुलाया और उनको नसीहतें की और उनसे ये कहा कि मैं अगर तुम्हें मालदार छोड़ जाता, अगर तुम मालदार चाहता तो तुम मालदार बन सकते थे, लेकिन तुम्हारा बाप इसकी वजह से जहन्नम में जाता। दूसरा ये था कि तुम मोहताज रहो और तुम्हारा बाप जन्नत में चला जाए। तुम्हारा फकीर होना और तुम्हारे बाप का जन्नत में चले जाना, ये ज्यादा बेहतर बात। अल्लाह अकबर। उन्होंने उस वक्त ये भी फरमाया कि अल्लाह की कसम, मैंने इनको वाजिबी हकूक से महरूम नहीं रखा। अपने साले मुसलमा बिन अब्दुल मलिक से फरमाते हैं कि मेरी औलाद दो हाल में ही होनी थी, या तो वो अगर मुत्तकी है तो अल्लाह ताला इनको गैब से रोजी अता फरमाए, या मुजरिम और गुनाहगार है तो ये मेरी शान नहीं है कि मैं गुनाहों में उनको और ज्यादा कवी बनाऊं कुछ इनके लिए छोड़ के। फिर इन पे बेहोशी का गलबा हो जाता था और इनकी हालत बहुत बिगड़ गई। तो उस वक्त इनके पास इनकी बीवी थी फातिमा और उनके भाई ये मुसलमान और इनका खादिम था। रात भर ये जागे रहे और आपकी तीमारदारी करते रहे। फातिमा फरमाती, रात भर इनकी बेचैनी शिद्दत में, बेचैनी में और इजाफा होता रहा। तो हम इनकी वजह से जागे रहे। सुबह को मैंने गुलाम को हुक्म दिया कि अमीरुल मोमिनीन के पास रहना, अगर आपको कोई ज़रूरत पेश आए तो कोई तो इनके पास हो। कहते हैं फिर हम चले गए और थोड़ी देर लेट गए, ये रात के जागे हुए थे। जब दिन चढ़ा तो मैं उठी और आपके पास गई, मैंने देखा कि गुलाम जो है वो कमरे के बाहर सोया था। मैंने उसको जगाया और पूछा, तुझे कमरे के अंदर बिठाया था, तू बाहर क्यों आ गया? बोला, अमीरुल मोमिनीन ने मुझे बाहर भेज दिया। आपने फरमाया था, मरसद मेरे कमरे से हट जा, अल्लाह की कसम मुझे एक मखलूक नजर आ रही है जिसकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, ना वो इंसान है ना जिन है। तो मैं बाहर निकल आया और निकलते वक्त मैंने सुना आप ये आयत पढ़ रहे थे, तिलक दारुल आखिरा, ये आखिरत का घर है, न जालुहा लिल्लदीन ला युरीदुना उलुवन फिल अर्द, ये हमने उनके लिए बनाया जो दुनिया में बुलंदी नहीं चाहते, दुनिया में फसाद नहीं चाहते, वल आखिबतु लिल मुत्तकीन, और अच्छा अंजाम तो मुत्तकीन का ही है। तो इनकी बीवी कमरे में दौड़ के गई, देखती हैं कि अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी और ये 40 साल की उम्र को हमेशा कहा करते थे कि ये वो हद है कि इसके बाद गुनाह करने के लिए इंसान के पास कोई उजर बाकी नहीं रहता। तो देखो 40 साल की उम्र में दुनिया से चले गए, खे आपने वो मुद्दत पूरी कर ली थी कि इसके बाद कहते हैं गुनाह करने का इंसान के पास कोई जवाज नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा। इन्होंने उम्र तो 40 साल की पाई, लेकिन लोग कहते हैं कि आप जैसी पारसाई 70-80 साल के बूढ़ों के लिए भी मुश्किल है। अल्लाह अकबर। एक दफा जब कब्रिस्तान गए तो फरमाते हैं वहां पे कि देखो दुनिया तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो जाए तो धोखा ना खा जाना। तुम्हें पता है ये कितनी जल्दी मुंह फेर लेती है, बेवकूफ है जो इसके धोखे में फंस जाए। कहाँ गए वो जो इसका शौक रखते थे, जिन्होंने बड़े बड़े शहर आबाद किए, बड़ी बड़ी नहरें निकाली, बड़े बड़े बागात बनाए, बहुत थोड़े दिन रह के सब छोड़ के चले गए, वो अपनी सेहत से धोखा खा गए और गुनाहों में मुब्तला हो गए। खुदा की कसम, दुनिया में माल की कसरत से वो लोग रश किए जाते थे, बावजूद इसके कि माल के कमाने में उनको बड़ी रुकावटें आती थी, फिर भी माल के पीछे भागते थे। लोग उन पर हसद करते थे, लेकिन वो बेफिक्र होके माल जमा करते रहे और इसके जमा करने में हर किस्म की तकलीफ उठाई, लेकिन अब देख लो मट्टी ने इनके जिस्मों का क्या हाल कर दिया, कीड़ों ने इनके जोड़ों का, उनकी हड्डियों का क्या बना दिया। ये लोग दुनिया में ऊंची ऊंची मसहरियों पर, ऊंचे ऊंचे फर्शों पर, नरम गद्दों पर, नौकरों और खादिमों के दरमियान आराम करते थे, रिश्तेदारों और पड़ोसी, और ये हर वक्त इनके पास तैयार रहते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, आवाज देके इनसे पूछो कि इनके ऊपर क्या गुजर रही है। गरीब अमीर सब एक मैदान में पड़े हैं, इनके मालदार से पूछो उसके माल ने उसको क्या फायदा दिया, और इनके फकीर से पूछो उसके फकर ने उसको क्या नुकसान दिया। इनकी जुबान बहुत बोलती थी, इनकी आंखों को देख के दे इनकी आंखों को देखो जो बहुत देखती थी, इनकी नरम खालों का पूछो जो बड़ी खूबसूरत थी, चेहरों का हाल पूछो क्या हुआ, इनके नाजुक बदन होते थे वो कहाँ गए, कब्र ने सब का हाल बुरा कर दिया। अल्लाह हू अकबर, इनके लिए अब रात दिन बराबर है, दोस्तों से मिल नहीं सकते, किसी को अपने पास बुला नहीं सकते, आज ये बोसीदा हड्डियां हो चुके हैं। मगर बाज खुश नसीब ऐसे हैं कि कब्रों में लज्जतें उठा रहे हैं, लेकिन ये वो ही लोग हैं जिन्होंने इस धोखे के घर में उस घर को याद रखा, उसकी उम्मीदों को मुकद्दम किया, उसके लिए तोशा जमा किया, अपने पहुंचने से पहले अपने जाने का सामान कर दिया। फिर फरमाने लगे, ऐ वो इंसान जो कल को कब्र में जरूर जाएगा, तुझे इस दुनिया की किस चीज ने धोखे में डाल रखा। अल्लाह हू अकबर, इस तरह ये कह के अपने आप को भी वास करते थे, लोगों को भी सुनाते थे। फरमाते हैं, ऐ बेवकूफ, ख्वाब की लज्जतों से धोखे में ना रह, तेरा सारा दिन गफलत में गुजरता है, तेरी रात सोने में गुजरती है, और मौत तेरे सर पे सवार है। आज तू वो काम कर रहा है कि कल को इन पर पछताएगा। दुनिया में जानवर इसी तरह जिंदगी गुजारते हैं जिस तरह तू गुजार रहा। कहते हैं इसके बाद एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि इनका इंतकाल हो गया। सुभान अल्लाह, ये वो शख्सियात हैं जो बड़ी शख्सियात हैं, इनकी जिंदगी के वाकयात बहुत ही सबक आमोज हैं, और खास तौर पे उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी हमसे इसलिए बहुत रेलिवेंट है कि इन्होंने बहुत ऐश देखा था, बहुत आराम देखा था, लेकिन कैसे इन्होंने अपनी जिंदगी को यकसर बदल दिया। हम सोचते ही रह जाते हैं, हाँ हम नेकी की तरफ आएंगे, हाँ हम अपने आप को चेंज करेंगे, लेकिन वो जिंदगी में दिन कभी आता ही नहीं। हालांकि वाकई यही नेक आमाल है जो कब्र में काम आ जाने वाले हैं। हदीस में है कि जब मोमिन को उसकी कब्र में रखा जाएगा और वो अपने घर वालों के कदमों की चाप भी सुन रहा होगा कि मुझे छोड़ के जा रहे हैं, तो अजाब उसकी तरफ आएगा, ऐसे में उसकी नमाज उसके सर की तरफ खड़ी हो जाएगी और उसका रोजा उसके दाएं जानिब खड़ा हो जाएगा, और उसकी बाकी नेक आमाल जैसे उसकी जकात उसकी बाएं तरफ खड़ी हो जाएगी, और उसका सदका और उसकी सिला रहमी उसके पैरों की तरफ खड़े हो जाएंगे, और जिस तरफ से अजाब आएगा उसको कहेंगे यहां से तुम नहीं आ सकते, यहां पे हम खड़े हैं। तो यानी वो वहां पे जम जाएंगे और अजाब को उस बंदे तक पहुंचने नहीं देंगे। तो ये नेकियां जो आज हमें बहुत भारी मालूम होती है, हम थक जाते हैं करके नेकी, ये तो हमारे बॉडी का हर्ट्स है कब्र के। इस दुनिया में जो इनमें घिरा रहा कब्र में ये इसको घेर लेंगे, जहां पे कोई और बॉडीगार्ड काम नहीं आएगा, ये नेकियां ढाल बन जाएंगी। अजाब के आगे और क्या चाहिए,
और अगर ये नेकियां ही ना हुई या ये नेकियां ही कमजोर हुई तो अजाब उस बंदे तक पहुंच जाएगा। तो इन नेकियों को हमने मजबूत करना ताकि अजाब हम तक ना पहुंच सके। और ये तो अभी मुनकर नकीर भी नहीं आए, उससे भी पहले की बात है, इसके बाद वो आएंगे और आके पूछेंगे इंसान से सवाल जवाब। तो अभी हिसाब भी नहीं शुरू हुआ कि अजाब उसकी तरफ बढ़ेगा। अगर खुदा ना खास्ता हम में से किसी के पास ये नेकियां ना हुई तो क्या करेंगे? दफनाने वाले तो चले जाएंगे। तो हमें सबसे ज्यादा इनकी जरूरत उस वक्त होगी जिस वक्त हमारी आंखें बंद हो जाएंगी। लिहाजा इनमें मेहनत करनी है, इनमें खुद को थकाना है। देखें, दुनिया की तकलीफ से बचने के लिए कहीं हम पेंशन फंड में पैसे डालते हैं कि बुढ़ापे में काम आएंगे, कहीं वैक्सीन लगवाते हैं कि बीमारी के खिलाफ दिफा करेंगे, कहीं सेविंग्स अकाउंट के अंदर हम अपने पैसे जमा कराते हैं कि जॉब चली जाए तो वहां से गुजारा पूरा करेंगे। ये नहीं सोचते कि ये नेकियां करेंगे तो तब कब्र में भी ये काम आएंगी, जिस वक्त मुझे देखने वाला कोई नहीं होगा, इनको भी मैं जमा कर लूं। हालांकि ये दुनिया के जो अकाउंट हम खुलवाते हैं या ये जो दुनिया के फंड्स में हम डालते हैं, इनका तो श्योर भी नहीं कि इनकी जरूरत पड़ेगी भी या नहीं, मगर कब्र में तो हम सबको जाना है, वहां तो 100% इन नेकियों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि हमारे नबी की हर बात सच्ची है। तो लिहाजा उस दिन के लिए अपने लिए नेकियों को जमा कीजिए। आज की जो दुआ है वो भी नेकी के कामों में तौफीक मिलने की दुआ, कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे दे नेकी के कामों के लिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक के बगैर नहीं होता। और अगर वाकई हमारे अंदर इस चीज की तड़प है तो हम तड़प के दुआ करें, और इसमें शुक्रगुजारी भी है, इसमें अपनी औलाद के लिए दुआ भी है, इसमें तौबा भी है। और ये नंबर 17 पे है PDF में आपकी, रब्बी औज़िअनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, ए मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पे किया और मेरे वालदैन पे। व अन आमल सालिहन तरदाहू, ए अल्लाह मुझे ऐसे नेक अमल की तौफीक दे जिनसे तू राजी हो जाए। पता नहीं कई चीजें हम खुद ही सोचते रहते हैं ये बड़ी नेकी के काम है, लेकिन शायद पता नहीं उनमें अल्लाह की रजा है या नहीं। जिनमें तू राजी हो अल्लाह वो वाले नेक काम मुझसे कराना। वो असलह ली फी जुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद को उनकी सलाह कर दे, को नेक बना दे। इन्नी तुबतु इलैक, मैं तेरी तरफ तौबा करती हूँ। वो इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमानों में से। बहुत प्यारी दुआ। आज का जो जिक्र है इसको बताने से पहले मैं जो कल का जिक्र है वो आपको बताना चाहती हूँ, जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला था। अच्छा, उसकी इतनी फजीलत है आपको अगर पता चल जाए ना तो आप वो कहेंगे कि मैं हर वक्त यही जिक्र करती हूँ। इसलिए कि देखिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला में क्या है? नहीं मेरे अंदर कोई कुव्वत ना कोई ताकत मगर अल्लाह के पास है। किस चीज की नहीं है कुव्वत? ना नेकी की मुझे कोई कुव्वत है, ना नेकी करने की यानी, ना बुराई से बचने की मुझे कोई कुव्वत है, ना कामयाबी हासिल करने की, ना राहत हासिल करने की, ना सुकून हासिल करने की, ना खुशियां हासिल करने की, ना आग से निजात हासिल करने की, ना दुनिया के फितनों से बचने की, ना सेहत हासिल करने की, ना हिफाजत हासिल करने की, किसी चीज की भी मेरे पास ताकत है ही नहीं। फितनों से बचने की मेरे पास ताकत नहीं, मुश्किलों से निकलने की मेरे पास ताकत नहीं, मुसीबतें झेलने की मेरे पास ताकत नहीं, किसी चीज की भी नहीं ताकत, मुसीबतों से भी मुकाबला करने की ताकत नहीं। तो यानी इंसान अपनी बेबसी अल्लाह ताला के आगे रख देता है कि अल्लाह मेरे पास तो कोई ताकत है ही नहीं, इतनी आजी का इजहार है इसके अंदर। और फिर सारी ताकत किसके पास है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। अल्लाह सारी ताकत तो तेरे पास है कि तू मुझे बचा ले इन सारे फितनों से, बुराइयों से, गुनाहों से, आखरत में नाकामी से, दुनिया में नाकामी से। यानी यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई वर्ड नहीं बोला गया कि इस चीज के अंदर मेरे मेरे पास ताकत नहीं, हर चीज की, किसी चीज की भी मेरे पास ताकत नहीं है अल्लाह। ना नाकामी से बचने की, ना गुनाहों से बचने की, ना शर से बचने की, ना नेकी करने की, ना कामयाबी हासिल करने की।
ना दोनों तरफ की आप अब इस जिक्र के अंदर दोनों बातें करते हैं कि इस चीज की भी ताकत नहीं है, उसकी भी ताकत। तो ये इसमें इतनी इंसान अपनी आजी का इजहार करता है, अपने आप को अल्लाह ताला के सपुर्द कर देता है, उसको ही पुकारता है, और एक बेबस इंसान पड़ा हुआ है जो कह रहा है कि अल्लाह मैं तो बेबस ही हूं, मेरे पास तो कोई भी कुव्वत नहीं है, और मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, मुसीबतें बहुत ज्यादा, इनके इनसे निकलने का रास्ता ही मेरे पास नहीं। तो फिर अल्लाह किसके किसके पास है? अल्लाह तेरे पास है, मुझे तेरी मदद चाहिए। तो जब एक इंसान अपनी नातवानी का इस तरह से इजहार करता है ना कि हर हाल में, हर वक्त, हर लम्हे में, अल्लाह मुझे तेरी जरूरत है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं अल्लाह। तो इमाम इब्ने कय्यम कहते हैं कि मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए और मुसीबतें झेलने के लिए इस जिक्र में हैरान कुन असर अंगेजी है, इतना असर है इसमें। क्योंकि जब इंसान ने अपने आप को डाल दिया अल्लाह ही के आगे, तो फिर अब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं अल्लाह, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, चाहे औलाद के मसले हैं, चाहे अपनी सेहत के कोई प्रॉब्लम्स हैं, चाहे हस्बैंड के हैं, चाहे बाहर के फितनों के हैं, चाहे रिस्क के हैं, तो किसी तरह का भी मसला है, जो बंदा ही कह दे हार मान ले अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूं, तू ये सब कुछ, तो फिर अल्लाह ताला उसकी मदद क्यों ना करे। औफ बिन मालिक के बेटे थे, तो उनको मुशरिकों ने कैद कर लिया, तो वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को दुश्मनों ने कैद कर दिया और मेरे घर के अंदर फाका है। तो आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला की कसरत करो। तो उन्होंने ये पढ़ा तो बेटा भी आ गया और अपने साथ ऊंट भी ले आया जो दुश्मन के थे। तो इससे परेशानियों से निकलने का रास्ता है इसमें, क्योंकि इससे अल्लाह की मदद आती है। तो अब जब आपने ये इस जिक्र को, ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये आप कसरत से किया करें, और जो आज का जिक्र है वो भी अब इसके साथ आप और भी मिला सकते हैं, जैसे क्या हदीस में हमें पता चलता है ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सारे कलिमात आप कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सुभान, आगे पीछे भी कर सकते हैं, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये हदीस में आता है, जो ये कहेगा उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, चाहे समुंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। तो ये जब आप पूरे पढ़ लेंगे तो इसकी ये फजीलत है, वरना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला की फजीलत भी बहुत ज्यादा है। इसी तरह आज अपनी रात को सजाने के लिए आप क्या करेंगे कि जो आखिरी तीन सूरतें हैं उनको पढ़ के आपने सोना है, और कितनी दफा पढ़ना है? तीन तीन दफा, जैसे कुल हो अल्लाह अहद तीन दफा पढ़नी है, कुल औज़ु रब्बिल फलक तीन दफा, और कुल औज़ु रब्बिन नास तीन दफा। लेकिन कैसे पढ़नी है? ये सुन्नत इस तरह थी कि रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को जोड़ के इनके ऊपर पहले कुल वल्ला कुल फलक और नास, ये देखे ये तीनों पढ़ के हाथों पे फूंका और फिर पूरे जिस्म के ऊपर जहां तक हाथ गए फिर लिया, फिर दोबारा सूरह इखलास पढ़ी, फलक और नास पढ़ी और फिर फूंका हाथों पे, फिर दोबारा फेर लिया, फिर तीसरी दफा पढ़ी और फिर फेर लिया, ये तीन दफा हो गई ये तीनों सूरतें। तो क्या मिलेगा इससे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान की आखिरी तीन सूरतें जिनको माऊजात कहते हैं, ये तुम्हारे लिए हर किस्म की चीज से किफायत हो जाएंगी, यानी काफी हो जाएगी हर चीज के लिए ये तीन सूरतें पढ़ना। अब चाहे फक्र व फाका है, चाहे नेकी की तौफीक मिल जाना है, चाहे गुनाहों से बचना है, चाहे कोई भी चीज है, कोई भी आपका काम है, स्पेसिफिक इसलिए नहीं बताया गया वरना उस चीज के लिए हो जाता ना सिर्फ, तो हर किस्म की चीज के लिए काफी हो गई आपके लिए। तो देखिए आसान आसान काम है ना ये, कोई मुश्किल ज्यादा लंबे तो काम है नहीं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं ना कि सलामती के साथ जन्नत में चले जाएं, कोई प्रॉब्लम ना हो जन्नत में जाने, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसका भी नुस्खा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। इसका नुस्खा क्या बताया? कि चार काम कर लो लोगों, और आसान आसान है वो चार काम भी बड़े आसान है। एक सलाम को आम करो, यानी सबको सलाम करो, यानी आप देखें कि जिस उम्मत को मुर्दों को भी सलाम करने का हुक्म है कि आप कब्रिस्तान जाएं तो उनको भी कहें सलाम, तो
तो जिंदों को वो सलाम ना करे मतलब के बगैर, कैसी बात है ना ये। और इसके ऊपर भी अजर मिलता है, आपको पता है अस्सलाम वालेकुम पे 10 नेकियां, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला पे 20, वबरकातु भी कह देंगे तो 30 नेकियां मिलेंगी। तो फरमाया सलाम को आम करो। नंबर टू, लोगों को खाना खिलाओ, कोई भी है। देखिए भूख हर एक के साथ लगी, पेट सबके साथ है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, भूख सबको इक्वल लगती है, सबको खाना खिलाओ। नंबर थ्री, सिला रहमी करो, रहम के रिश्तों को जोड़ो, तोड़ना नहीं है। और फिर नंबर फोर, जब लोग सो रहे हैं ना तब कयाम करो यानी तहज्जुद, और तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये चार काम मेरे नबी ने बता दिए, इनमें कोई फिर कोई गलती नहीं है, और इनके अंदर कोई बात ऐसी नहीं है कि जो हम कहेंगे नहीं ये सच्ची नहीं है। जब उन्होंने फरमा दिया तो आंखें बंद करके उसके ऊपर यकीन कर लें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाना ऐसी नेकियां करने की जो तुझे राजी कर दे, और अल्लाह ताला हम सबकी बख्शिश फरमा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। इंशाअल्लाह ताला कल से हमारा प्रोग्राम जो है वो 10 मिनट पहले शुरू होगा, क्योंकि हमारा सहरी का टाइम फिर कम रह जाता है और मुझे बहुत जल्दी करनी पड़ती है फिर आपको हर चीज़ बताने में। तो आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज़ कि कल से हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह ईस्टर्न टाइम के मुताबिक 5:30 पे शुरू होगा, यानी इस वक्त जिस पे आप प्रोग्राम में ज्वाइन करते इससे 10 मिनट पहले इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।